आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, SBS हिंदी के स्टूडियो में आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। इनका नाम है नेट रेब। मूलतः अमेरिकी हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में काफी समय से हैं। लेकिन इनके बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने अपने जीवन के 17 वर्ष, शुरुआती 17 वर्ष बिताए भारत में। नेट, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
नेट को हिंदी आती है और इन्होंने हिंदी पढ़ी है, वो भी अमेरिका में। अपने बारे में बताइए कि भारत में 17 वर्ष कैसा था जीवन आपका?
अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे इंडिया में पैदा हुआ, साउथ इंडिया में। मेरे फादर उस वक्त एजुकेशनल मिशनरी था, तो वो कॉलेजों में पढ़ाते थे। तो जब मैं पैदा हुआ, वो कर्नाटका में रहते थे। और तो मैं अपने पहले 5 वर्ष एक छोटा सा टाउन गदग, ढाड़वाल डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में गुजारा। उसके बाद जब मैं 7 उम्र का था, तो मैं, हमारी फैमिली इलाहाबाद तक गए, तो मेरा फादर ट्रांसफर हुआ। तो तकरीबन 7 एज से 17 तक मैं अपने पढ़ाई, अपने तालीम, अपने शिक्षा वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में कर दिया। और हमारे जो लंबी लंबी जो विंटर छुट्टियों, हॉलीडेज जो थे, मैं इलाहाबाद में वो उसको गुजारे।
आपकी हिंदी में थोड़ी झलक मदुरई वाली है, साउथ इंडियन हिंदी तो बहुत खूबसूरत हिंदी है आपकी। लेकिन वुडस्टॉक में तो आपने पढ़ाई की नेताओं और बॉलीवुड के बच्चों के साथ, तो कभी फिल्मों में जाने का नहीं सोचा कि टॉम एल्टर को टक्कर देते हैं?
नहीं, जब, दैट्स ट्रू, मेरे साथी जो थे वो देवानंद के लड़के थे, सुनील आनंद और दवीना उनकी लड़की थी, मेरे जूनियर थी। मनोज कुमार के बच्चे थे और वैसे थे, लेकिन उस वक्त हम बस बच्चे थे, हम ज्यादा फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं लगाते थे, बस हमारे साथियां थे। जब मैं टीनेजर बन गया, तो हमको पता चला कि भाई इनका फादर बहुत ही मशहूर है, देवानंद कभी आता था हमारे स्कूल को। तो जितने हमारे जो कर्मचारी जो थे हमारे, वो भाग भाग के आते थे, भाई देवानंद आ गए। तो हमको पता चला कि अच्छा, ये कोई बंदा है।
अगर शुरुआती दौर की बात करूं मैं आपके स्कूलिंग और भारत में रहने की, 17 वर्ष, तो क्या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस अपने आप पे मानेंगे आप, क्या अनुभव थे भारत के आपके?
ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जवाब इतनी सीधी सादा नहीं है। क्योंकि जब आप, जैसे मछली जो है वो पानी में बहता है, तो उसको पता नहीं कि पानी क्या चीज होती है
जी।
वो बस ये अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो इंडिया मेरे लिए नेचुरल एनवायरनमेंट थी। तो क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहा, तो ये हिंदू कल्चर जो है, वो कुंभ मेला हम जाते थे और मंदिर बहुत थे और इस्लाम भी थे, तो बस ये मेरा नेचुरल एनवायरनमेंट थी। अगर मैं सोचता हूँ तो 2-3 इन्फ्लुएंसेस थे। एक है म्यूजिक, संगीत। अभी मैंने कहा कि मुझे पता इतना नहीं था कि भाई देवानंद कौन थे, मोहम्मद रफ़ी कौन है, ये है। लेकिन उनकी म्यूजिक, उनके जो फिल्मी म्यूजिक थे, वो बहुत ही मेरे जहन में आते थे, बहुत,
तो कहीं
सबकॉन्शियस लेवल पे म्यूजिक बहुत ही और मेरे फादर ने काफी इंडियन क्लासिकल रिकॉर्ड्स खरीदता था।
तो कभी क्रिश्चियनिटी और हिंदुत्व और इस्लाम का झगड़ा नहीं हुआ घर पे, या कुछ बातचीत होती होगी क्योंकि आप एकेडमिक बैकग्राउंड और फैमिली से?
नहीं, वैसे जब हम बड़े होते थे, मैं और अपने भाई, तो हम अपने फादर से लड़ाई करते थे कि भाई आप क्रिश्चियनिटी क्यों अपनाते हैं, ये हिंदू, उनके भी धर्म भी अच्छे हैं, इस्लाम भी अच्छे हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो ये सब बहस नहीं होते थे। मेरे फादर वैसे काफी एकेडमिक आदमी था। तो एक अजीब बात है कि एक याद है कि जब मैं शायद 11-12 साल का था, हम इलाहाबाद के संगम के करीब एक जगह है बंद, यहाँ छोटा सा डैम है वहाँ, और साधु और ये फकीरों बहुत वहाँ बैठते थे और वो अपने लोग आते थे उनके दर्शन करने के लिए। तो मेरा फादर भी जाता था वहाँ और कभी कभी उनसे इंगेज करता था कि भाई ये फिलॉसफी के बारे में, कि हिंदुइज्म ये कहता है और हमारे क्रिश्चियनिटी ये कहता है, तो आपका क्या ख्याल है? तो काफ़ी मैं थोड़ा सा एम्बेरेस होता था कि भाई ये मेरा फादर क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे इस पर फ़ख्र करता था कि वो इंगेज करता था और अपने, यू कुड से, राइवल्स जो हैं, रिलीजियस राइवल्स के साथ वो बात करता था। और एक और अजीब सी या इंटरेस्टिंग बात है, मेरे फादर ने अपना एमए किया और उसका एमए थीसिस जो है, कंपेरिजन किया उसने गॉस्पल ऑफ जॉन हमारे क्रिश्चियन बाइबल का एक खास बाइबल है गॉस्पल ऑफ जॉन, और उसको कंपेयर किया भगवद गीता को, तो उसने कहा कि भाई इतने बहुत सी मिलती जुलती चीजें हैं, तो उसने उस पे रिसर्च किया।
अब बात करते हैं, आप भारत से जब आप बाहर निकले उसके बाद आप बने, पढ़ाई पूरी की और फिर एड वर्कर बने यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के लिए।
हाँ,
वो समय कैसा रहा आपका, क्योंकि वो बिताया आपने इराक में काफी समय था।
हाँ जी, हाँ जी, जब मैं अमेरिका गया मैं 17 साल का था, और मुझे एक मिनट के अंदर मुझे पता चला कि भाई अगर मैं यहाँ रहूँ तो मेरा जो दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये मेरा यानी माहौल नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। ये अमेरिकी जो है वो ठीक है रहने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन अगर मैं जिंदगी भर यहाँ रहना तो मुझे, मैं पागल हो जाऊँगा। तो मुझे ये एक ही मकसद था स्कूल में कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, लेकिन रास्ता मुझे पता नहीं था। जब मैं अपना MA ख़त्म किया तो एक चांस मिला कि UN रेफ्यूजी एजेंसी जो है UNHCR, वो पाकिस्तान के लिए रिक्रूट कर रहे थे। तो क्योंकि मैंने उर्दू भी पढ़ी यूनिवर्सिटी में, जब मैंने अपने MA किया तो उर्दू जुबान में कुछ पढ़ा, तो इस वास्ते से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंडिया में था और मैं उर्दू और हिंदी भी समझते थे, तो UN ने मुझे हायर कर दिया। तो मैं भगवान को बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे बचाया और वहां से निकाल दिया अमेरिका से। तो बस पाकिस्तान में पहुंचा दिया, और फिर वहां से पाकिस्तान इराक गया
जी।
इराक तो मेरे, वहां मेरी बीवी मिल गई, वो नर्स थी, हाँ, और उस वास्ते से मैं यहाँ आ गई।
अभी मैंने जब आपने पाकिस्तान की बात की तो हल्की सी पंजाबी झलक आपकी आवाज में आ गई, कहीं शिफ्ट होता जा रहा है कोड जो है। अच्छा, पाकिस्तान से अब आपको फिर ले आता हूँ पाकिस्तानी पैसेंजर के बारे में, जिस पर आपने लिख डाली एक किताब शाह ऑफ शिकागो, जो जल्द जून में आएगी।
हाँ जी,
पाकिस्तानी पैसेंजर आप चला रहे हैं टैक्सी, सुनने वालों को बता दो कि पाकिस्तानी टैक्सी नहीं चला रहा है, नेट टैक्सी चला रहे हैं और एक पाकिस्तानी पैसेंजर है, क्या माहौल हुआ होगा?
बस मैं उस वक्त मैं टैक्सी चला रहा था और मैं सोच रहा था उस वक्त के भाई मैं क्या करूं, PhD करूं या कहीं और नौकरी करूं, और मेरा दिल नौकरी करना था, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया रास्ता नहीं पता था कहाँ कैसा करूँ। तो उस दौरान मैं टैक्सी चला रहा था और एक सुबह एक कॉल आया कि भाई इस बंदे को पकड़ो, इस बंदे को ले आओ, और मैंने वहाँ गया तो एक बंदा, मैं समझा कि इंडियन है या पाकिस्तानी है, मेरे बैक सीट में बैठा, तो पता चला कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि मैंने कहा हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम या नमस्ते, पता नहीं वो क्या कहा। वो बड़ा हैरान हो गया कि भाई आप गोरा हैं और आप हमारी भाषा बोलते हैं। मैंने हाँ, तो उसने कहा अच्छा आप टैक्सी छोड़ो मेरे घर आओ, घर नहीं है, छोटा सा कमरा था, मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। तो उसने कहानी सुना दिया और बहुत मुख्तसर, बहुत शॉर्ट ब्रीफली, वो बड़ी खानदान का एक लड़का था, लेकिन खानदान अपने बाप से झगड़ा हुआ और उसका फादर ने उसको
लात मार के
अमेरिका, चलो अमेरिका आ गया, वो क्रिमिनल बन गया, वो आदि बन गया, कोकेन की आदि, शराब की आदि, जेल कई दफा दाखिल हुआ, और जेल में उसने वैसे एक आदमी को कत्ल कर दिया। तो वो बहुत ही क्या कहते हैं दुखी मंद आदमी था। तो जब हम बात करते थे वो गजल सुना रहे थे मुझे गुलाम अली का, तो फिर वो उसको बंद कर दिया, उसने कहा भाई मैं गिरा हुआ आदमी हूँ और मैं अपने आप को उठाना नहीं समझता, कैसा करूँ, क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई आप बड़े खानदान के लड़का है, आप क्यों वापस नहीं जाते हैं? उसने कहा भाई दफा करो, मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगा। तो बस उसके बाद मैंने उसे नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी मेरे जहन में वो लग गया। तो कहीं 10-15 साल बाद मैं उसके बारे में सोच रहा था कि भाई क्या होता अगर वो आदमी पाकिस्तान वापस जाता है, उसकी फैमिली से मिलता है, क्या होता है। तो ये नॉवल जो आ रहे हैं उसके बारे में है कि मैंने इमेजिन करता हूँ कि ये बंदा वापस गया।
चलते चलते नेट आखिरी सवाल पूछूंगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आप किन चीजों को अहम मानते हैं जिसे आगे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को?
मैं समझता हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया, किसी इंटरनेशनल रिलेशंस कल्चर नंबर वन है। तो मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से ज़्यादा और भी कल्चरल एक्सचेंजेस हो, आर्टिस्ट वहां से आए, आर्टिस्ट वहां यहां से वहां जाएं। जैसे मेरा ख्याल इस आजकल बॉलीवुड का एक एग्जीबिशन हो रहे हैं बॉम्बे टॉकीज, इस किस्म के एक्सचेंजेस होते हैं तो मेरा ख्याल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इंसानी जो अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये सारे पॉलिटिक्स का ये तो और रिलीजन वगैरह, ये मेरा ख्याल है, पता नहीं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि कल्चरल एक्सचेंज हो ताकि ऑस्ट्रेलियंस अंडरस्टैंड इंडियन बेटर एंड इंडियंस अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलिया बेहतर, ये मेरा ख्याल है।
नेट SBS हिंदी के स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ ढेर सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।